Tajan, very 93. पहला जनवरी 93 प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा, परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हरेक बच्चे को सर्व समर्थियों के खजाने अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्धाधिकार के रूप में दे दिए और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। तो बाबा ने क्या कर दिया इस दिन, सर्व समर्थियों के खजाने, सर्व समर्थियों का खजाना बच्चों को दे दिया। समर्थिया अर्थात शक्तियां, यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई, मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। यह रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कह सकती है, बाप का खजाना सो मेरा खजाना, बाप के खजाने को अपना बना लिया। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ बापा ने अपनी सर्व समर्थियों के खजाने बच्चों को दे दिए। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन का हर दिवस ही समर्थिया प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर बिल की, जैसे आदि से अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे बिल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। तो बाबा ने सर्व समर्थिया को खजाना दिया और दूसरी कौन सी चीज थी? विल पावर्स की विल पावर्स। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाए अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की बिल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस और समर्थि दिवस कहते हैं। विल पावर्स की बिल, बिल कब करते हैं? जब कोई देह छोड़ने की तैयारी में होता है, मरणासन्न होता है, तब विल की जाती है। विल में क्या करते हैं?
स्थावर अस्थावर
सारी संपत्ति, जो भी संपत्ति है वो किसी व्यक्ति के नाम कर दी जाती है। तो बाबा ने यहाँ पे कौन सी विल कर दी? सर्व शक्तियों की विल, विल पावर्स की विल, सर्व समर्थियों की विल। कितना टाइम लगाया करने में? कितना टाइम लगाया? शक्तियां ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है?
हाथ में हाथ मिलाया दादी के,
बस कुछ सेकेंड नहीं लगते। बहुत लंबा समय नहीं लगता है,
साइन करने को
ज्यादा टाइम लगता है, लिखा पढ़ी को ज्यादा टाइम लगता है। शक्ति और ट्रांसफर हो सकती है, एक आत्मा से शक्ति दूसरे आत्मा में ट्रांसफर की जा सकती है। अगर एक अति शक्तिशाली है तो वो अपनी शक्तियों से निर्बल को भी शक्तिशाली बना सकता है। बोल के द्वारा बनाना अलग बात है,
दृष्टि से,
केवल दृष्टि मात्र से, केवल संकल्प मात्र से। संकल्प किया और हो गया, केवल दृष्टि दी और आत्मा शक्तिशाली बन गई। सबसे ज्यादा आंखों के द्वारा शक्तियां प्रभावित होती है, नैनों से। इसके लिए दृष्टि का बहुत महत्व है। विकार भी दृष्टि से ही आता है और पवित्रता भी दृष्टि से ही दी जा सकती है। विकार की दृष्टि, अगर एक आत्मा में विकार है, अगर उसी दृष्टि से दूसरे को देखता है, तो वह एनर्जी विकार की वहां पर भी ट्रांसफर होती है, तो दूसरी आत्मा में भी विकार उत्पन्न हो सकता है, इधर से उधर और फिर उधर से इधर, और सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरे होने के बाद विकार का जन्म होता है। तो जैसे ये सत्य है, उतना ही सत्य पवित्रता भी। पवित्रता के संकल्प को ट्रांसफर किया जा सकता है। हम संकल्प जैसे कि एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसको यहां से उठाकर वहां रखी जा सकती, वैसे संकल्प भी एक वस्तु है। एवरी थॉट इज अ थिंग, उसको यहां से हम प्रकृति में भेज सकते हैं। प्रकृति में जाकर वो वहां पर रिएक्शन करेगी प्रकृति के साथ, और जो भी घटनाएं घटित हो रही है जीवन में, उसी आधार से हो रही है। जो हम संकल्प कर रहे हैं वही हमारे सामने आ रहा है। तो बाबा ने सर्व सामर्थ्यों का खजाना बच्चों को दे दिया। नए नए शब्द बाबा प्रयोग करता है, शक्तियों की जगह सामर्थ्या, शक्तियों की जगह सामर्थ्या। तो सर्व सामर्थ्यों का खजाना दे दिया, विल क्या कर दिया, विल पावर्स। हमारे पास परमात्मा विल पावर है, संसार के आत्माओं के पास विल पावर है। वो इस विल पावर से क्या क्या कुछ कर देते हैं, बड़े बड़े काम केवल अपने विल पावर के आधार से करते हैं, इच्छा शक्ति के आधार से। और हमारे पास है परमात्मा विल पावर्स, जो कि परमात्मा, जो कि ब्रह्मा ने विल कर दिए। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है। बाप दादा देख रहे हैं कि
और निमित्तात्मा जो दादी निमित्त बनी ना, तो निमित्तात्मा आप सामने और हम हमारा भी हाथ तो हमें भी मिलती है निमित्तात्मा के द्वारा। ये निमित्त का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम गुरुदेव बाबा के सामने बैठते थे तो मेरे मैं नहीं लेकिन सब है ऐसा निमित्त को मिलता।
निमित्त तो इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए,
ये बहुत ही
वो निमित्त ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मैं
हाँ। दादी भोग स्वीकार करती माना हम भी करते हैं दादी में हम समाये हुए हैं। निमित्त का बहुत ही
महत्व है। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। त्रिमूर्ति वरदान, कौन त्रिमूर्ति, नहीं नहीं वरदान, त्रिमूर्ति आगे से शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में कौन वो त्रिमूर्ति है जिनका वरदान, बाप टीचर सदगुरु मम्मा बाप, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। तीन शक्तियां, तीन वरदान, शिव का वरदान है, ब्रह्मा का वरदान है और जगदम्बा का वरदान है, साथ साथ चल रहा है।
और इसलिए भी होता बाबा बाप दादा और मैं, ये भी त्रिमूर्ति
बाप टीचर सदगुरु
और बाप टीचर सदगुरु भी त्रिमूर्ति।
इसलिए त्रिमूर्ति वरदानी वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हैं। जिस आत्मा को एक परमात्मा का ये वरदान मिल जाए, कोई महान आत्मा का वरदान मिल जाए, तो क्या क्या कर देते। यहाँ तो विश्व की सबसे महान आत्मा, विश्व की नंबर वन आत्मा का वरदान, जगदम्बा का वरदान और परमात्मा का वरदान सब सब चल रहे। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यह चाहते हैं ना, कब हो जाए, कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। कल क्या कहा था भगवान, कब सुनोगे? कल नहीं, सुबह नहीं, साकार मुक्ति।
क्या क्या
प्रत्यक्षता की नगड़े, जब मैं और मेरापन समाप्त हो जाएगा, मैं नहीं तो मेरापन भी नहीं, जब मैं और मेरापन नहीं दोनों समाप्त, तो समानता और संपूर्णता आ जाएगी। और क्या हो जाएगा? विजय के नगड़े, प्रत्यक्षता की नगड़े और विजय के नगड़े एक ही है। विजय के नगाड़े बजेंगे और क्या होगा?
सफलता के बाजे।
तो ये हो जाएगा, बाबा ने कहा था। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, छोटी सी बात है, वो कर दो। 93 की मुरली है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी है, लेकिन एक होती है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। ऐसी प्रतिज्ञा केवल जोश में नहीं की जा सकती, बहुत सोच विचार के करना पड़ेगा ऐसी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा करना बहुत आसान है, उनको निभाना बहुत मुश्किल है। वो प्रतिज्ञा बहुत सोच समझ के करनी है। इसके लिए जोश में आकर अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा नहीं करनी है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है जो हम कर सके। क्योंकि अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं, किसी का क्रोध का संस्कार है और तुरंत प्रतिज्ञा करता है मैं आज से क्रोध छोड़ता हूं, बिना ये जाने कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध के कारण क्या है। आज प्रतिज्ञा की, 10 दिन के बाद वापस क्रोध आया, फिर थोड़ी हिम्मत कम होती है, फिर वापस प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से क्रोध छोड़ता हूं, फिर वापस क्रोध आया, फिर इस तरह से आत्मा की अंदर की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, उदासी सी आ जाती है, आत्मग्लानि से भर जाती है आत्मा। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा 1906 में की, पर उसकी तैयारी उन्होंने 1900 से चालू की। 6 साल लगे एक प्रतिज्ञा पूरी लेने के लिए, तैयारी के लिए केवल, क्योंकि प्रतिज्ञा अर्थात प्रतिज्ञा एक ही बार ली जाती है, बार बार नहीं। प्रतिज्ञा अर्थात एक ही बार, एक बार प्रतिज्ञा ले ली मतलब फिर वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा एक ही बार, वो फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसको तोड़ना नहीं। तो ऐसी अगर प्रतिज्ञा करनी है तो अपने लेवल की थोड़ी प्रतिज्ञा करनी है। एकदम ये प्रतिज्ञा, मैं बाप समान बन जाऊंगा 10 दिन में, इस तरह की प्रतिज्ञाएं जो होती है वो प्राय टूट जाती। लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है, ये प्रतिज्ञा नहीं है। इनमें जोश है, प्रतिज्ञा तत् पूर्ण समझ, संपूर्ण सोच, वो पूर्ण समझदारी एक दिन प्रतिज्ञा बन जाती है। प्रतिज्ञा तो हम बाद में स्थूल रूप से ले सकते, परंतु ये समझ कि इससे मुझे क्या क्या नुकसान है, यही प्रतिक्रिया संपूर्ण समझ ही दृष्टि को बदल देती है, और दृष्टि बदलती तो फिर अपने आप ही व्यवहार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा। इसके लिए प्रतिक्रिया लेने में बहुत शीघ्रता नहीं करनी है, पूर्ण सोच विचार करके। बाबा कह रहे हैं ना, प्रतिक्रिया की निशानी क्या होती है, जान चली जाए लेकिन प्रतिक्रिया नहीं जा सकती। भीष्म के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए कि वो प्रतिज्ञा तोड़ने पर उसको जैसे बाध्य किया गया, परंतु उसने नहीं तोड़ी। भीष्म प्रतिज्ञा भी एक कारण है महाभारत के युद्ध का, ऐसे दिखाते। वो अगर प्रतिज्ञा नहीं होती तो महाभारत का युद्ध ना होता, परंतु जो प्रतिज्ञा ले ली वो ले ली बस, फिर पीछे मुड़ना नहीं है। एक बार जो हो जाए, फिर इस बार ये मार्ग चुन लिया तो चुन लिया, फिर दूसरा मार्ग हमारे लिए जैसे है ही नहीं। दो मार्ग थे, हमने ये मार्ग ले लिया, थोड़ा चलने के बाद पता चला इसमें तो बहुत काटे हैं, फिर सोच रहे चलो उधर जाके देखते क्या है। एक बार कूद गए मतलब कूद गए बस, फिर ये नहीं सोचना है कि उधर गया तो क्या होता था, उधर चाहे कुछ भी हो सारा संसार उस मार्ग पे जा रहा है, हमारे मार्ग पे काटे ही काटे पर हम इसी मार्ग से चलेंगे। ये है प्रतिक्रिया, फिर पीछे नहीं हटना है, इसमें ना पीछे मुड़ना है ना तो पीछे
देखना,
पीछे देखना है। जैसे गुनाह का मार्ग होता है ना, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा होता है गुनाह के मार्ग पे जो निकल जाता है उसके लिए फिर वो तो ना जब पीछे मुड़ सकता है ना तो लौट सकता है। गुनाह का मार्ग ही ऐसा है, जो क्रिमिनल्स और वो सब एक बार उस मार्ग पे चले गए तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। हमारा ये सन्मार्ग है, इंटरनेशनल हाईवे पे हम निकल पड़े हैं गलियों को छोड़कर, वरदान था ना कभी, राम इंटरनेशनल हाईवे है ये, तो एक बार इधर निकल पड़े तो अभी गलियों में नहीं भटकना है। वो ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं, चाहे उसमें सारा संसार जा रहा हो, चाहे उसमें कितना भी आकर्षण हो, वो मार्ग हमारा है ही नहीं, ये मार्ग बस यही मार्ग। तो बाबा कह रहे हैं जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्या है, वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस हालात हो, तो जान की बाजी के आगे क्या है, तो दिव्य प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है। जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। एक होता है वादा, एक होता है वचन, वादा करना, वचन देना किसी को, वादा मनुष्यों से, वचन भी मनुष्यों से, प्रतिज्ञा उसके भी ऊपर का शब्द है। एक है संकल्प करना, कैसे की जाती है संकल्प, भक्ति मार्ग में कैसे करते हैं, जल
पानी,
जल लेते हैं और संकल्प करते हैं कि आज से ये करेंगे, पानी अभिमंत्रित जल हो जाता है, मंत्रित हो जाता है जल। तो संकल्प लेना, संकल्प करना, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी सहन करना पड़े हटना नहीं, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते लेकिन साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा खेल करते? जब कोई समस्या व सर्कमस्टेंस होती होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते, इसमें बहुत होशियार है। इसके लिए जिस चीज की प्रतिज्ञा कर रहे उस चीज को संपूर्ण रीति से समझना है, उसके बारे में जितना हो सके ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी, चाहे वो भोजन में कोई परिवर्तन हम कर रहे, कोई अगर संकल्प करे कि मैं बस अभी एक ही बार, जैसे एक ही बार भोजन करूंगा, संकल्प तो बहुत अच्छा है परंतु उसको आदत नहीं है, कभी किया नहीं है, एक ही बार भोजन करो तो बस दिन रात भोजन ही दिखते रहता है, सुबह से उठने से रात तक भोजन ही भोजन। हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमृत वेला मिस हो गया तो आज भोजन नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप को दंडित करना है। फिर क्या होगा, 8 बजते ही जैसे, फिर रोज तो ख्याल नहीं आता है भोजन नाश्ते का, पर आज नाश्ता नहीं करना है, यही संकल्प घूमते रहता है कि अब क्या करें। नहीं, पर फिर याद आता है अभी चिंता अमृत वेले की नहीं है, अभी चिंता चल रही है भोजन की। अमृत वेला मिस क्यों हुआ उसका चिंतन नहीं चल रहा है अभी, वो बाजू हट गया। अभी प्रायोरिटी किसकी है, ये भोजन किया, नाश्ता नहीं करना। अच्छा चलो नाश्ता नहीं किया, फिर 11 बजे 12 बजे खाली भोजन का ही चिंतन चल रहा है दिन रात। अगर कोई बीच में टोली देता है तो फिर वापस अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करता है कि भोजन में हमने मना किया था, टोली तो ले सकते हैं। फिर वो खाया, फिर और कुछ खाया, फिर जब दोपहर हुई तो वापस भोजन के ही संकल्प। चलो दोपहर का भी छोड़ दिया, फिर तो मतलब दिन भर वही चिंतन। अब हमने किया क्यों था ये, ताकि अमृत वेला मिस ना हो। पर वो क्यों मिस हुआ इसके कारण का संशोधन नहीं किया। समझ, हर चीज को समझ से ही करना है। कोई भी बात अपने ऊपर थोपनी नहीं है, थोपे हुए नियम थोपी हुई प्रतिज्ञा है। वचन नियम कुछ भी, नियमी व्रति व्रत, व्रत भी लेते हैं पर जबरदस्ती लिया हुआ व्रत, उससे कुछ नहीं होता है। सारी प्रतिज्ञाएं जो ली जाती है टूट जाती है। क्रोध को छोड़ना है, समझो उस क्रोध का सामना करो, देखो उस क्रोध को क्यों क्यों आ रहा है, कारण क्या है उसके अंदर, क्यों मैं कितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करने के बाद भी क्रोध आता है, क्यों आता है? क्योंकि जब क्रोध आता है हम उस क्रोध को नहीं देख रहे, हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके वजह से क्रोध आया। उस क्रोध का सामना करो, उसको देखते रहो और वो नष्ट हो जाएगा। क्रोध अंधकार है। हम शांति के सामान लेते हैं पर अशांति का कारण क्या है वो नहीं ढूंढ रहे। अशांति के कारण, अशांति पर नजर टिकाओ तो अशांति के कारण की तरफ, तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और स्वतः ही हम, ये आश्चर्य है क्या कि हम शांत होने का प्रयत्न कर रहे हैं जबकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। प्रयत्न किस चीज का किया जा रहा है, शांत होने का, और हम कह क्या रहे हैं हमको अशांति से मुक्त होना है। वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, हम उससे मुक्त होना चाह रहे हैं, और जो हमारा स्वभाव है हम उसमें स्थित होना चाह रहे हैं। कैसी विडंबना है, और इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज से अशांत नहीं होंगे। कितना विरोधाभास है यहां पर, मतलब आत्मा को पहले ही पता है कि मैं अशांत होने वाला हूं। तो ये प्रतिज्ञा है जो मैं बाबा जो दृढ़ता शब्द यूज कर रहे हैं यहां पर, वो दृढ़ता अर्थात क्या प्रतिज्ञा है, किस समय हम प्रतिज्ञा करें। और एक बार प्रतिज्ञा करने से नहीं होता है कोई भी चीज, उसको बार 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 रिवाइज करना होता है। जैसे स्टूडेंट रिहर्सल करते हैं आज के माँ बाप के प्रश्न, जैसे स्टूडेंट रिहर्सल करते हैं उसको रिहर्सल करो। और व्यक्तवाणी में भी कहा, एक कमजोरी को छोड़ो, एक विशेषता धारण करो और अमृत वेले दोहराओ बार 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 बार। उसी तरह पवित्रता की प्रतिज्ञा एक बार करने से नहीं होता है। समर्पण जो है वो एक 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 वन टाइम बिजनेस नहीं, एक बार समर्पण हो गया इसका हो गया, ये तो हर दिन की हर समय की जैसे एक अवस्था है समर्पण भाव। वो कोई क्रिया नहीं है करने की, बैंड बाजे के साथ करने वाली कोई दिखावा या शो या आडंबर नहीं है। अगर उस तरह से कोई आता है तो जब जाएगा तो वो उल्टा उत्सव होगा फिर वहां पर। ये तो आंतरिक स्थिति है, अंदर की अवस्था है। तो तीन बातें बाबा ने कही है यहां पर। एक तो समर्थ बाप ने सर्वसमर्थिया हमको दे दी, सर्वसमर्थियों का खजाना। दूसरा, सब विल पावर्स की विल हमको देती है। और तीसरा, सफलता की चार बातें, सफलता की बात। सफलता का वरदान किसके द्वारा मिला, परमात्मा ब्रह्मा और जगदम्बा के द्वारा। और चौथी बात, दृढ़ प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा है लो जो प्रैक्टिकल हो, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना है कि जिससे हम गिर पड़े मुंह के बल, जोर शोर से प्रतिज्ञा की और पता चला फिर तो और दुखी और आत्मग्लानी अपराध बोध, चार घंटे सोएंगे। मुरली में सुना संसार वालों की नींद होती 8 घंटे, तुम्हारी 4 घंटे होनी चाहिए। 4 घंटे सोए और दिन भर दिमाग भारी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, फिर भी वो सब कुछ होगा उसमें। तो हमारा तो लचीला जीवन है, ब्राह्मण जीवन अर्थात लचीला जीवन, फ्लेक्सिबल। सहजता लानी है स्वयं में, कोई भी जबरदस्ती अपने आप को करना नहीं है, गोलू के बैल की तरह गोल 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 घूमना नहीं है। सहजता, जीवन में सहजता के लिए समझ को बढ़ाना है। अगर कुछ गलती होती है तो अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को गालियां नहीं दो, निंदित नहीं करो, सोचो क्यों हुआ ये, क्या कारण है इसका, जरूर कुछ तो है, और उस कारण तक पहुंचो, ढूंढो उस कारण को। ढूंढते 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 जब वो कारण संपूर्ण रीति हमारे सामने आ जाएगा, वो कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, प्रतिज्ञा करने की वहां आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वो जब पूरी प्रतिज्ञा खत्म हो जाए फिर बाद में भले प्रतिज्ञा करो, फिर वो जो प्रतिज्ञा होगी ना वो एकदम शक्तिशाली प्रतिज्ञा होगी, पहले नहीं करो। अच्छा।